आरवी ने फट से कहा, जी क्या जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं जिया को समझा दूंगा। संयम कह ही रहा था कि आरवी बोली, अरे नहीं नहीं संयम जी, अच्छा है, बुरा लगने जैसा कुछ नहीं, जिया बच्ची है और बच्चों का कहना क्या बुरा लगना, नाइस नेम, डेविल वाली डॉक्टर, मुस्कुराते हुए। ये सुनकर संयम भी मुस्कुरा दिया और अपना कार्ड निकालकर आरवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरा नंबर, जब भी जिया से बात करना चाहे और मिलने का मन हो। आरवी ने कार्ड लिया और फिर संयम से उसका फ़ोन मांगा, फ़ोन दीजिए अपना। संयम ने उसकी ओर देखते हुए अपना फ़ोन निकालकर आरवी के हाथ पर रख दिया। आरवी फ़ोन की ओर देखते हुए बोली, पासवर्ड है इसमें तो, संयम की ओर देखते हुए। संयम ने आरवी के हाथ से फ़ोन लेकर फिंगरप्रिंट लगाया और वापस आरवी के हाथ में देते हुए कहा, ओपन है। आरवी ने अपना नंबर संयम के फ़ोन में सेव किया और फिर उसके नंबर से अपने नंबर पर जिया नाम लिखकर मैसेज भेज दिया। उसने संयम को उसका फ़ोन पकड़ा दिया और अपना फ़ोन कोर्ट से निकालकर संयम के नंबर पर जिया नाम से सेव किया। फिर अपना फ़ोन संयम को दिखाते हुए बोली, आ गया नंबर मेरे पास और आपके पास भी, संयम के फ़ोन की ओर इशारा करते हुए। संयम ने अपने फ़ोन की ओर देखा तो आरवी ने डेविल वाली डॉक्टर नाम से अपना नंबर सेव कर दिया था। ये देख संयम मुस्कुरा दिया, हम्म। तभी आरवी संयम की ओर अपना कार्ड बढ़ाते हुए बोली, कार्ड खो जाता सो फ़ोन में सेव कर लिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं, जिया का जब भी मन हो मुझसे मिलने का आप मैसेज या कॉल कर दीजिएगा। संयम कार्ड पकड़ते हुए बोले, जी। आरवी ने पूछा, जिया ने मेडिसिन अच्छे से ली ना? संयम ने उत्तर दिया, हम्म, जैसे आपने कहा था, से एक जूस वगैरह में दे दी थी, उसे पता भी नहीं चला। आरवी ने कहा, गुड। अच्छा संयम जी, एक बात तो बताइए, उस दिन भी आप और जिया की केयरटेकर ही आए थे जिया के साथ हॉस्पिटल, और आज भी आप दोनों ही, जिया के मॉम डैड कहाँ हैं? वो आते तो शायद उस दिन वो इतना डरती भी नहीं, मम्मी पापा के साथ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ना? संयम आरवी की ओर देखते हुए बोले, हाँ रहते हैं तो, बच्चे पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल, जिया के मॉम डैड होते दुनिया में तो ज़रूर आते, उस दिन भी और आज भी, मुझसे बेहतर जिया का ध्यान रखते, अच्छे से संभाल भी लेते, शायद चोट भी ना लगने देते जिया को। जिया की मम्मी पापा नहीं है, जब वो साल भर की थी तब भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में वो हमें छोड़कर चले गए, अपनी किसी दोस्त की पार्टी में गए थे, मौसम खराब था तो मॉम ने जिया को घर ही रख लिया, अगर उस दिन जिया भी उनके साथ होती तो आज जिया भी हमारे पास नहीं होती, वो भी भाई भाभी के जैसे ही। इतना कहकर संयम रुक गया। आरवी की आंखों में उसकी बातें सुनकर नमी आ गई। आई एम सॉरी, संयम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, जिया ना मेरी प्रेसेंस है, उसमें मेरी जान बसती है, जिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, मॉम डैड जिया के दादा दादी भी हैं, बट फिर भी मैं उसे ज़्यादा खुद से दूर नहीं रखता, नहीं चाहता कभी उसे भाई भाभी की कमी रहे, उनके जितना तो नहीं पर जैसा मॉम डैड अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो सब मैं जिया के लिए करना चाहता हूँ, कभी माँ बन लोरी गाता हूँ तो कभी घोड़ा बन सैर करवाता हूँ, बस तकलीफ़ में नहीं देख सकता, चोट तो क्या, बीमार पड़ जाए तो डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, ये जो चोट लगी है जिया को ये भी पहली बार हुआ है, वरना एक खरोंच तक नहीं आने दी मैंने आज तक, बहुत प्यार करता हूँ बहुत अपने बच्चे से। ये सुनकर आरवी ने आंखों के किनारे साफ किए और मुस्कुराते हुए बोली, वो तो दिख ही रहा है कि जिया के संयम चाचू उसे कितना प्यार करते हैं, जिया बहुत लकी है, बिल्कुल मेरी तरह ही, जो उसे कितना प्यार करने वाले, इतनी केयर करने वाले चाचू मिले हैं, जो प्रिंसेस बनाकर रखते हैं उसे, सारे नखरे भी उठाते हैं और जिद पर कुछ भी कर जाते हैं। संयम हैरानी से आरवी की ओर देखने लगा तो आरवी फिर बोली, मेरे भी मॉम डैड नहीं, वो भी मुझे जब छोटी थी तो छोड़कर चले गए अलग ही दुनिया में छुट्टियां मनाने, हंसते हुए, मेरे पास भी चाचू हैं जो बिल्कुल जिया के चाचू की जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, कभी लगा ही नहीं मॉम डैड नहीं है, उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी, न लाड डालने में न ख्वाहिशें पूरी करने में, चोट जब भी लगी तो मेरे साथ खुद रो पड़े और मेरे साथ साथ खुद भी ड्रेसिंग करवा लेते, कभी पापा बन, कभी माँ बन, कभी बड़े भाई बन, तो कभी अच्छा दोस्त बन, हर कदम पर साथ दिया मेरे चाचू ने, नाम तो संकट है उनका पर मुझ पर कभी कोई संकट नहीं आने दिया, यकीन से कह सकती हूँ जिया को आपके रहते संयम जी कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका प्यार आपका साथ उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा, आपके रहते उसे सारे जहाँ की खुशियाँ मिलेगी, जिया बेस्ट है तो उसके चाचू सुपर बेस्ट, सल्यूट करते हुए। ये सुनकर संयम मुस्कुरा दिया, और आप सबसे बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना हाथ आरवी की ओर बढ़ाते हुए। आरवी ने संयम से हाथ मिलाया। तभी जिया वॉशरूम से आ गई और आते ही आरवी से बोली, मुझे वो वीडियो देखना है। ये सुनकर आरवी संयम की तरफ देखने लगी तो संयम ने जिया से कहा, जिया बच्चा अभी हमें घर जाना है, चलो वीडियो बाद में मिलो तब देख लेना, बस 2 मिनट चाचू, जिया ने मासूमियत से कहा। संयम फिर कुछ कहने को हुआ कि आरवी ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और जिया के पास आकर बैठ गई और अपने फ़ोन से वीडियो चलाकर जिया को फ़ोन थमा दिया। जिया को वीडियो देखना है तो ज़रूर देखेगी, चलो हम दोनों साथ देखते हैं और कोई इधर नहीं आएगा। जिया आयांश वाला वीडियो देखते देखते खिलखिलाकर हंसने लगी, उसके साथ साथ आरवी भी हंस रही थी। उनको हंसता देख संयम बोला, हंसी तो सुन रही है पर है कौन इस वीडियो में, हमें भी तो दिखाइए जो जिया को इतना पसंद आया है वीडियो। तब तक वीडियो पूरा हो गया था। आरवी फोन कोर्ट में रखते हुए बोली, सॉरी संयम जी, हम ये वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते। ये स्पेशल वीडियो है जिसमें कोई पहली बार खुलकर हंसा है, मानो उसके दिल ने खुद इजाजत दी हो उसे इतना हंसने की, अयांश के बारे में सोचते हुए। संयम कमर से हाथ दिखाते हुए बोला, तो फिर आपने जिया को कैसे दिखा दी ये वीडियो? वो भी एक नहीं, कई बार। ये सुनकर आरवी हंसती और जिया का चेहरा हाथों में भरकर उसका माथा चूमते हुए बोली, क्योंकि जिया स्पेशल है हमारे लिए, हमारी छोटी सी न्यू फ्रेंड। और जिया आरवी दोनों ने खुश होकर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। संयम के साथ साथ जिया की केयरटेकर भी उनको इतना खुश देखकर मुस्कुरा उठे। उसी शाम अयांश घर आया तो विनित वर्तिका भी उसके साथ चले आए। राधे सबके लिए पानी लेकर आया। वर्तिका ने पानी पीते हुए दिनकर जी को आज की रायचंद ग्रुप्स के साथ हुई मीटिंग के बारे में बताया। तभी विनित ग्लास टेबल पर छोड़कर सोफे से उठते हुए बोला, दादू, दी ने आपको मीटिंग के बारे में तो बता दिया, अब मैं आपको मीटिंग में क्या जबरदस्त चीज हुई उसके बारे में बताता हूँ, जो कि सबसे हटकर है। आपको पता है दादू, आज मीटिंग में मिस्टर रायचंद की बेटी आई थी, रिद्धिमा रायचंद। वर्तिका ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, तो इसमें हटकर क्या है, वो तो आनी ही थी मीटिंग में, राइट अयांश? अयांश पानी पीते हुए बोला, हाँ, रायचंद ग्रुप्स की मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसे तो आना ही था। विनित दोनों की ओर देखते हुए बोला, हाँ आना ही था, पर अभी मुझे मेरी बात पूरी करने दो, आप दोनों चुप रहो। हाँ तो दादू सुनो आप, दिनकर जी के पास आकर बैठते हुए रिद्धिमा रायचंद, जैसे अपना अयांश टॉप बिजनेसमैन है ना, वैसे ही वो टॉप बिजनेस वुमन है। इतना ही नहीं दादू, वो बिल्कुल अयांश जैसी है, बोलने का स्टाइल, अंदाज, मिजाज, एटीट्यूड, बात कहने का तरीका उसका, जब वो बोले तो बस सुनने वाले सुनते रह जाएं। जैसे अयांश अपनी बात कहता है तो सबका ध्यान अयांश की बात पर थमसा जाता है, कम लफ्जों में सही और सटीक बात। मुझे तो रिद्धिमा रायचंद से मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं लेडी अयांश से मिल रहा हूँ। मुझे क्या, तरुण जी और दी को भी पक्का ऐसा ही लगा था कि वो हमारे बॉस अयांश मेहरा का फीमेल वर्जन है, हंसते हुए।
विनीत की बात पर वर्तिका, राधे और दिनकर जी भी मन मंद हंस दिए, पर जैसे ही अयांश ने अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए विनीत को डांटते हुए शटअप कहा तो विनीत के साथ सबने अपनी हंसी पर कंट्रोल कर लिया। पर विनीत जी कहाँ मानने वाले थे, वो अयांश की तरफ आ खड़ा हुआ, क्या शटअप, सच कह रहा हूँ, रिद्धिमा रायचंद बिल्कुल तेरी जैसी है, जो खड़े खड़े ही होश उड़ा दे, एकदम तेरे टक्कर की लड़की है। अयांश अपना एक हाथ पैंट की जेब में डाल और एक विनीत के कंधे पर रखते हुए बोला, अच्छी है बिजनेस में, अच्छे अच्छे नए नए आइडिया रखती है, अफकोर्स दिमाग से काम लेती है, तभी आज टॉप में है। उसके बात करने का स्टाइल, उसके प्लान सब डिफरेंट है, जिसके साथ हमारे लिए काम करना आसान होगा, बट मेरे जैसी तो नहीं है। और हाँ, मिस रायचंद मेरे टक्कर की तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे टक्कर की सिर्फ एक ही लड़की है, आरवी के बारे में सोचते हुए, और तुझे अच्छे से पता है वो कौन है। इतना कहकर अयांश वहां से जाने के लिए मुड़ा ही कि ठीक सामने उसके बीच हॉल में आरवी खड़ी थी, क्रमशः